नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Art Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ह्यूमन अगेन इन द AI एज, पत्रकार और लेखक J.D. MacPherson की गैर कथा पुस्तक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि मानवीय सोच, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता की परीक्षा के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य AI से डराना या उसे असीम समाधान बताना नहीं है। पुस्तक पूछती है कि जब भाषा, शोध, लेखन और विचारों के प्रारूप मशीनें तत्काल बना सकती हैं, तब मनुष्य की विशिष्ट भूमिका क्या रह जाती है। मैकफर्सन का उत्तर मानवीय एजेंसी, विवेक और मौलिक दृष्टि में है। पुस्तक की संरचना खोजों, संभावनाओं, संचालन और जोखिमों के 4 भागों में बताई गई है। इस क्रम से पाठक AI के रोजमर्रा प्रभाव, उसके रचनात्मक उपयोग, उसके साथ काम करने की व्यावहारिक विधि और निर्भरता के खतरों को समझता है। इसका केंद्रीय आग्रह है कि AI बुद्धि को बढ़ा सकता है, लेकिन अंतर्दृष्टि, संदर्भ और उत्तरदायित्व का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए AI युग में मनुष्य बने रहना निष्क्रिय स्थिति नहीं, एक सचेत अभ्यास है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, AI को प्रतिस्थापक नहीं मानवीय क्षमता बढ़ाने वाला उपकरण मानना। पुस्तक का मूल दृष्टिकोण AI को मनुष्य के विरुद्ध खड़ी शक्ति मानने के बजाय एक प्रवर्धक के रूप में देखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तकनीक अपने आप उपयोगी या निष्पक्ष है। प्रवर्धक वही बढ़ाता है जो उसके उपयोगकर्ता के पास पहले से है। स्पष्ट प्रश्न, विषय की समझ और रचनात्मक दिशा रखने वाला व्यक्ति AI से तेज शोध, विकल्पों की सूची या प्रारूप तैयार करवा सकता है, लेकिन अस्पष्ट सोच, सतही जानकारी या बिना जांचे निष्कर्ष भी उतनी ही तेजी से फैल सकते हैं। इसीलिए मैकफर्सन के लिए प्रश्न यह नहीं है कि AI क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि उपयोगकर्ता उससे किस उद्देश्य के लिए और किस स्तर की सजगता के साथ काम कर रहा है। पुस्तक रचनात्मकता को स्वचालन से समाप्त होने वाली वस्तु नहीं मानती। उल्टे, जब सामान्य प्रारूप और अनुमानित सामग्री आसानी से बन सके, तब निजी दृष्टि, अनुभव, स्वाद और संपादकीय चयन का मूल्य बढ़ता है। यह विचार ज्ञान कर्मियों और रचनात्मक पेशेवरों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। उनकी भूमिका केवल उत्पादन करने की नहीं, बल्कि समस्या तय करने, परिणाम का अर्थ समझने और उसके सामाजिक परिणामों की जिम्मेदारी लेने की होती है। AI उपयोगी सहयोगी हो सकता है, पर दिशा और अंतिम उद्देश्य मनुष्य को ही तय करना है। दूसरा, विश्वसनीयता जाल और दिखने वाले परिश्रम की बदलती कीमत। मैकफर्सन जिस विश्वसनीयता जाल की चर्चा करती है, उसका संबंध उस पुरानी धारणा से है जिसमें किसी काम पर लगा अधिक समय उसकी गुणवत्ता और महत्व का प्रमाण माना जाता था। AI के कारण अनेक कार्य, जैसे प्रारंभिक शोध, सार बनाना, भाषा सुधारना या विचारों का ढांचा तैयार करना, कम समय में हो सकते हैं। इससे काम का समय और काम की वास्तविक उपयोगिता अलग हो जाते हैं। पुस्तक इस बदलाव को केवल उत्पादकता का उत्सव नहीं बनाती। यदि लोग कम समय में बने काम को स्वतः संदिग्ध माने, तो वे परिणाम की गुणवत्ता के बजाय मेहनत के प्रदर्शन को पुरस्कृत करेंगे। दूसरी ओर, यदि वे गति को ही उत्कृष्टता समझ लें, तो जांच, विशेषज्ञता और गहराई की उपेक्षा होगी। इस तनाव में विश्वसनीयता का नया आधार प्रक्रिया की पारदर्शिता, तथ्य की पुष्टि, उचित संदर्भ और जिम्मेदार संपादन बनता है। किसी रिपोर्ट, पाठ या निर्णय की गुणवत्ता यह देखकर तय होनी चाहिए कि उसमें तर्क कितना सुदृढ़ है, स्रोत कितने विश्वसनीय है और निष्कर्ष परिस्थिति के अनुकूल है। इस विषय का व्यावहारिक संदेश है कि पेशेवरों को अपने मूल्य का आधार केवल व्यस्तता या लंबे श्रम घंटे नहीं बनाना चाहिए। उन्हें निर्णय क्षमता, विषय विशेषज्ञता और परिणाम के प्रति जवाबदेही को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। AI के साथ तेज काम करना तभी विश्वसनीय है जब उसके पीछे मानवीय जांच मौजूद हो। तीसरा, भाषा, प्रॉम्प्ट और संपादन को नई बौद्धिक साक्षरता बनाना। पुस्तक AI के साथ प्रभावी संवाद को केवल तकनीकी तरकीब नहीं मानती। प्रॉम्प्ट लिखना मूलतः अपने विचार को स्पष्ट करने का अभ्यास है। उपयोगकर्ता को यह बताना पड़ता है कि समस्या क्या है, किस प्रकार का परिणाम चाहिए, कौन सी सीमाएं लागू है, किस पाठक के लिए सामग्री है और किस आधार पर उत्तर का मूल्यांकन होगा। इसलिए भाषा यह आदेश देने का माध्यम भर नहीं रहती, बल्कि सोच को संरचना देने का साधन बनती है। मैकफर्सन का जोर इस बात पर है कि भाषा अध्ययन, दर्शन और सजग ध्यान जैसे कौशल AI युग में अधिक उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को बेहतर प्रश्न बनाने और उत्तरों का अर्थ परखने में सक्षम करते हैं। इस प्रक्रिया में संपादन की भूमिका केंद्रीय है। AI किसी लेख, योजना या विश्लेषण का प्रारूप दे सकता है, लेकिन वह यह निश्चित नहीं कर सकता कि कौन सा वाक्य उचित है, कौन सा तथ्य अधूरा है, किस स्वर का चयन नैतिक है या कौन सा विचार वास्तव में नया है। पुस्तक का यू द एडिटर वाला विचार इसी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। अच्छा उपयोगकर्ता मशीन के पहले उत्तर पर नहीं रुकता, वह उत्तर को जांचता, बदलता, अस्वीकार करता और अपनी आवाज में ढालता है। इस तरह प्रॉम्प्टिंग और संपादन मिलकर निष्क्रिय उपभोग को सक्रिय बौद्धिक भागीदारी में बदलते हैं। चौथा, मतिभ्रम। सत्यापन और अंतिम मानवीय जवाबदेही की आवश्यकता। एआई आधारित भाषा मॉडल अक्सर विश्वसनीय लगने वाले वाक्यों में गलत, अपूर्ण या गढ़ी हुई जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। पुस्तक इस समस्या को मतिभ्रम के जोखिम के रूप में रखती है। इसका महत्व केवल तकनीकी त्रुटि तक सीमित नहीं है। जब उत्तर धारा प्रवाह और आत्मविश्वास पूर्ण हो तो पाठक या उपयोगकर्ता उसे जांचे बिना स्वीकार करने की अधिक संभावना रखता है। यही स्थिति शोध, शिक्षा, सार्वजनिक संचार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और व्यावसायिक निर्णयों में गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। मैकफर्सन का व्यापक तर्क यह है कि एआई से मिली सामग्री को ज्ञान मान लेना भूल है। उसे एक प्रारंभिक प्रस्ताव, मसौदा या संकेत की तरह लेना चाहिए, जिसे स्वतंत्र स्रोतों और विशेषज्ञ समझ से परखा जाए। तथ्य सत्यापन, स्रोतों तक पहुंचना और संदर्भ देखना इसीलिए वैकल्पिक कदम नहीं है, वे उपयोग की मूल शर्त है। पुस्तक यहाँ मानवीय अंतर्दृष्टि और बुद्धि के बीच अंतर भी उभारती है। मशीन बड़ी मात्रा में भाषा और सूचना के पैटर्न संभाल सकती है, लेकिन किसी तथ्य के मानवीय प्रभाव, स्थानीय संदर्भ या नैतिक अर्थ की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अंतिम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, संपादक या संस्था ही परिणाम के लिए उत्तरदायी रहती है। इसलिए एआई से प्राप्त गति को जांच की जगह नहीं, जांच के लिए अधिक समय उपलब्ध कराने वाले साधन की तरह इस्तेमाल करना अधिक विवेकपूर्ण है। अंत में, डोपामिन जाल और कृत्रिम निकटता से बचते हुए सजग उपयोग। पुस्तक एआई के जोखिमों को केवल गलत सूचना या रोजगार परिवर्तन तक सीमित नहीं रखती, वह ध्यान, आदत और भावनात्मक निर्भरता के प्रश्न भी उठाती है। डोपामिन जाल की चर्चा उस आकर्षण से जुड़ती है जिसमें त्वरित उत्तर, लगातार नवीनता और बिना प्रतिरोध मिलने वाली प्रतिक्रिया व्यक्ति को बार बार प्रणाली की ओर खींचती है। यह अनुभव निष्क्रिय स्क्रॉलिंग की तरह मानसिक थकान पैदा कर सकता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण संवाद किसी समस्या पर सोच को आगे बढ़ा भी सकता है। अंतर उपयोग की मंशा और सीमा में है। यदि व्यक्ति हर असुविधा, ऊब या अनिश्चितता को तुरंत एआई से भरने लगे तो स्वतंत्र चिंतन और धैर्य कमजोर हो सकते हैं। दूसरी चिंता दूसरे स्व और लगाव के भ्रम की है। संवादात्मक एआई सहानुभूतिपूर्ण भाषा का आभास दे सकता है, पर वह मानवीय संबंध, पारस्परिक देखभाल या नैतिक प्रतिबद्धता नहीं है। पुस्तक इस भेद को बनाए रखने पर जोर देती है। उपयोगकर्ता एआई से विचारों का परीक्षण या लेखन सहयोग ले सकता है, लेकिन उसे अपनी भावनात्मक जरूरतों, सामाजिक संबंधों और निर्णयों का स्थान मशीन को नहीं देना चाहिए। सजग उपयोग के लिए ठहराव, सीमाएं और आत्मपरीक्षण आवश्यक है। उपयोगकर्ता को समय समय पर पूछना चाहिए कि यह संवाद उसकी समझ बढ़ा रहा है या केवल तत्काल आश्वासन दे रहा है। यही प्रश्न तकनीकी सुविधा को निर्भरता बनने से रोकता है। निष्कर्ष में, ह्यूमन अगेन इन द एआई एज उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो एआई को अपने काम या रचनात्मक जीवन में प्रवेश करते देख रहे हैं, पर केवल उपकरणों की सूची या भविष्यवाणियों से संतुष्ट नहीं है। ज्ञानकर्मी, लेखक, शिक्षक, उद्यमी, विद्यार्थी और संपादक इसमें विशेष रुचि पा सकते हैं, क्योंकि पुस्तक उनके सामने आने वाले मूल प्रश्नों पर केंद्रित है। बेहतर प्रश्न कैसे बनाए जाए, मशीन के उत्तर को कैसे परखा जाए, तेज उत्पादन के बीच मौलिकता कैसे बचाई जाए और सुविधा को निर्भरता बनने से कैसे रोका जाए, इसका व्यावहारिक लाभ एआई उपयोग के प्रति अधिक अनुशासित दृष्टि विकसित करना है। पाठक प्रॉम्प्ट, सत्यापन और संपादन को अलग अलग काम नहीं बल्कि जिम्मेदार सोच की जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के रूप में देख सकता है। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक यह याद दिलाती है कि सूचना की प्रचुरता अपने आप विवेक नहीं देती, विवेक के लिए संदर्भ, नैतिक निर्णय और अनुभव की जरूरत बनी रहती है। समान विषय की कई पुस्तकें या तो तकनीकी क्षमता समझाती है या स्वचालन के खतरों पर चेतावनी देती है। मैकफर्सन की पुस्तक का अंतर उसका संतुलन है। यह एआई को ना तो शत्रु बनाती है ना उद्धारक, इसके बजाय यह भाषा, ध्यान, रचनात्मकता और मानवीय एजेंसी को केंद्र में रखती है। इसीलिए यह बदलती तकनीक के बारे में पुस्तक होने के साथ साथ बदलते समय में जिम्मेदारी से सोचने की पुस्तक भी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं JDD मैकफर्सन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।